قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم خدا کے پاک کلام کے اس حصے پر آج غور کریں گے جو ہمیں ماضی کی یادوں کی بابت سکھاتا ہے، میموریز آف دی پاسٹ۔ ہم سب کے لیے بچپن کی یادیں، ہمارے گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ماضی کی طرف دھیان ہم اکثر کرتے ہیں، ہماری سوچ پیچھے کی طرف رہتی ہے، ہم حال کا مقابلہ، آج کا مقابلہ گزرے دنوں سے، ماضی سے کرنے کے عادی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں ماضی کی یادوں کی بابت کیا کچھ کرنے کے لیے سکھاتا ہے، آج اسے سیکھیں گے۔ ہمارا ماضی ایسا ہوتا ہے جہاں بڑی عظمت ہوتی ہے، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ بچپن سے ہم نے بڑی ترقی دیکھی ہوتی ہے، روپیہ پیسہ دیکھا ہے، خاندان میں خوشیاں دیکھی ہیں، اپنے کاروبار کی بڑی ترقی دیکھی ہے، بڑی عزت اپنی دیکھی ہوتی ہے، لوگ ہماری بڑی واہ واہ کرتے ہیں، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، معاشرے میں، سماج میں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا بڑا مقام ہوتا ہے، ہمارا نام چلتا ہے، ہمارا گھر علاقے میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے جبکہ لوگ پیدل چلتے ہیں، لوگ سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اور اکثر وہ بھی نہیں پڑھتے، اور ہم انگریزی سکولوں میں پڑھتے تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ بڑے زبردست لوگ تھے، بڑے تعلیم یافتہ تھے، بڑے ایماندار تھے، اور ہم نے ان کی سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں بڑے بڑے کام انجام دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ماضی کی ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا، گزرے وقتوں میں بڑی عظمت تھی، بڑی شان و شوکت تھی ہماری، بڑا جلال تھا، بڑا روب تھا ہمارا، بڑا نام تھا ہمارا، ہم جس طرف منہ کرتے تھے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، ہمارے لیے راستے کھلے کر دیتے تھے کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، ہم جس کام کا ارادہ کرتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے ماضی کی یہ یادیں ہو سکتی ہیں کہ ہم بڑے نامور تھے، ہماری بڑی شان و شوکت تھی، بڑے عظیم تھے ہم، ہمارا بڑا جلوہ تھا، بڑا اونچا مقام تھا، ہمارے بڑے ٹور تھے، بڑی بیجا بیجا تھی ہماری، بڑی واہ واہ تھی، اور ہم اسی سوچ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہی ٹور، وہی شان و شوکت، وہی عظمت، وہی گلوری، وہی جلوے ہمارے آج بھی قائم ہیں۔ ہم جو پہلے تھے وہ ہم آج بھی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ تبدیل ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معاشرے میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اب ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہم اسی جلوے میں، اسی شان و شوکت میں، اسی عظمت میں، انہی کامیابیوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہم تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنے حالات میں تبدیلی کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے حالات اور شان و شوکت تھی آج بھی وہی ہے، میں وہی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ سمسون کے جتنی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، جیسا روح کا مسا اس پر تھا اس کے زمانے تک کسی اور پہ نہیں ٹھہرا، وہ اکیلا بدنی طور پر اتنا زوراور تھا کہ ایک ہڈی کے ساتھ ہزاروں کو مار دیا کرتا تھا۔ کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا، کوئی بھی سورما اس کے سامنے ٹکر کا ہی نہیں تھا، کوئی چیز اس کے سامنے بھاری نہیں تھی، ہیوی نہیں تھی، مضبوط نہیں تھی، جو کچھ اس کے سامنے آتا وہ اس کو چیر پھاڑ دیتا، توڑ دیتا، ختم کر دیتا، وہ غالب آ جاتا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ خدا کا روح جب مجھ پر نازل ہوتا ہے تو خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ وہ ہزاروں کو مار دیا کرتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو اسے قابو میں رکھ سکتی۔ اسے رسیوں سے باندھو، زنجیروں سے جکڑو، اس کو شکنجوں میں باندھو، اس کو کاٹ میں ٹھونکو، اس کو کسی بھی طرح کی قید میں رکھو۔ جب وہ ارادہ کرتا، جھٹکتا اپنے بدن کو، تو وہ آزاد ہو جایا کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرا جلوہ کیا ہے، اسے پتا تھا میری طاقت کیا ہے، اسے پتا تھا میرا روب کیا ہے، اسے پتا تھا میری حیثیت کیا ہے۔ اور وہ ہر ایک بار وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرے اندر وہی طاقت ہے، وہی زور ہے، وہی اختیار ہے، وہی قوت میرے اندر اب بھی موجود ہے، اب بھی میری وہی شان و شوکت ہے، میرا وہی جلوہ ہے، وہی زور ہے میرے پاس، اور وہ اسی میں جی رہا تھا۔ خدا نہ کرے کہ کبھی یہ آیت کسی انسان کی زندگی میں پوری ہو۔ ذرا دیکھیے میرے ساتھ، قزات کی کتاب میں اس سے باب نمبر 16 ہے۔ خدا نہ کرے، پھر دہراتا ہوں، خدا نہ کرے کہ خدا کے کلام کی یہ والی آیت کبھی کسی انسان کی زندگی میں پوری ہو۔ قزات باب نمبر 16 ہے، ججز چیپٹر نمبر 16 اور آیت نمبر 20، یہ ذہن میں رکھیے۔ دعا کریں کہ خدایا کبھی میری زندگی میں یہ آیت پوری نہ ہو۔ آیت نمبر 20، پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اسے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی ہماری زندگی میں یہ وقت آئے کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو کہ خدا ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ کبھی یہ نوبت ہماری زندگی میں نہ آئے کہ ہمیں احساس تک نہ ہو کہ خدا ہم سے الگ ہو چکا ہے۔ اسے یہی تھا کہ میری وہی شان و شوکت ہے، اسے یہی تھا کہ میرے پاس وہی روح، وہی مسا، وہی اختیار، وہی قوت، وہی قدرت ہے، میں اور دفعہ کی طرح اب بھی جھٹکوں گا خود کو اور میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں یہ آیت پوری ہو کہ اسے خبر نہ ہو کہ خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب کو احساس رہے خدا ان میرے ساتھ ہے، اور ہم کبھی خدا کو اتنا ناراض نہ کریں کہ وہ ہم سے دور ہو جائے۔ ماضی کی کامیابیوں میں، شان و شوکت میں، عظمت میں، جلوے میں وہ زندہ رہ رہا تھا، اور یہ مناسب نہیں تھا، بالکل مناسب نہیں تھا۔ اسے پہلے چیک کرنا چاہیے تھا اپنے من میں، اپنی روح میں، اپنے دل میں، کہ کیا جس کی طاقت سے میں پچھلی بار میں، پچھلے واقعات میں، اب تک کی زندگی میں کامیاب ہوتا رہا، کیا وہ طاقت، وہ قوت، وہ اختیار اب بھی میرے پاس ہے یا نہیں؟ اور خدا کے الگ ہونے کی دیر تھی، وہ ایک عام انسان تھا، وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا، چھڑا نہ سکا۔ اور پھر 21 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی آنکھیں نکال ڈالی۔ خدا نے اپنے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، بدن کا سب سے سینسٹیو ایریا، جس کی حفاظت ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، آنکھ۔ ہمارے بدن کے، ہمارے ذہن کو، ہمارے برین کو اس بات کا احساس ہے کہ ریفلیکس ایکشنز میں جو کام ہم بغیر ارادہ کیے کر دیتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم پلکیں جھپکتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چہرہ ہٹا لیتے ہیں۔ روشنی پڑے ہمارے چہرے پہ، ہم آنکھیں بند کرتے اور چہرہ ہٹا لیتے ہیں۔ آندھی، ہوا، تیز مٹی ہماری طرف سفر کرتی ہوئی آئے، آندھیوں کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ، ہم اپنے آنکھیں بند کرتے اور چہرہ پلٹتے ہیں۔ ہمارا بدن اس طرح سے پروگرامڈ ہے، اس میں خدا نے یہ صفت رکھی ہے کہ ہمارے आंखें बंद हो जाती हैं, हमारी आंखों की हिफाजत हमारा बदन सबसे पहले करता है। जब खुदा अलग हो गया तो उसकी आंखें ही निकाल दें। तेरा बदन जिनकी हिफाजत गैर इरादी तौर पर भी करता है वो है ही नहीं। जब खुदा अलग होता है तो फिर हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, काबिल हमला हो जाते हैं, हम इजी टारगेट हो जाते हैं, हम खतरात में बिल्कुल बीच खड़े हो जाते हैं कि आओ खतरों, आओ हमलावर हो जाओ मुझ पर। तो माजी में लोग रहते हैं, माजी की यादों में जिंदगी गुजारते हैं। कितना अच्छा वो वक्त था कि मैं फिलिस्तीनियों को एक गधे के जबड़े की हड्डी से 10,000 को मार लेता था। कितना अच्छा वो वक्त था कि जब मैं फाटक को उठा के, जिसे 40 लोग मिलकर बंद करते खोलते थे, अकेला उठा के पहाड़ पे ले गया था। कितना अच्छा वो वक्त था कि जब शेर आया मैंने उसको दो हिस्से कर दिया, चीर डाला था उसे। वो उसी यादों में था, वो उसी बातों को लेकर जिंदा था, और उसे पता ही ना था, खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो चुका है। हम माजी की बातों को लेकर उन्हीं में जिंदा रहते हैं। मेरी कामयाबियां, मेरा जलवा और मेरा रोब और मेरा इख्तियार, मेरी शानो शौकत, मेरा रोब, मेरा शबशबा, क्या बात थी हमारी। अब तो लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कौन था। भाई क्या करे तेरी उस शानो शौकत का जो गुजर गई। अब तू भी समझ, पाकिस्तान में जो पहले नवाब होते थे बरतानवी राज में, और उससे पहले रियासतों के मालिक थे, अब उनकी औलादों को कोई पूछता नहीं। हिंदुस्तान में अब भी कई रियासतों के नवाब खानदान मौजूद हैं और वजीफा उनका मुकर्रर है हुकूमतों की तरफ से। इतने बढ़ गए हैं कि अब किसी को 50 रुपए वजीफा हिस्से में आ रहा है, किसी को 100 रुपए हिस्सा आ रहा है महीने का, पेंशन लगी हुई है उनकी। और अगर वो कहें जी हम नवाब हैं तो अब तो कोई उनकी नहीं मानेगा ना। वो तो 100-150 रुपया लेने के लिए डाकखाने के पोस्ट ऑफिस की लाइन में लगे होते हैं जी हमारा वजीफा आने वाला है। तो हम अपने माजी की अच्छी बातों को, कामयाबियों को और सक्सेस और ग्लोरी को हमेशा याद रखकर उसी में जीते ना रहें, हालात को समझने की कोशिश करें क्या बदल चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं, हालात बड़े खराब हैं, माली तौर पर खराब हालात हैं, जिस्मानी तौर पर हम कमजोर हो गए हैं, हमारी खानदानी हालत वो नहीं रही, मेरा इख्तियार वो नहीं रहा, हुकूमत मुझसे छिन गई है, मेरे पास वो ताकत भी नहीं है, वो टॉर नहीं है मेरे, मुश्किलात आ गई हैं, परेशानियों में घिरा हुआ हूं। तो पुरानी बातों को याद करते रहना, कहां गए वो दिन। कई औलादों की आदत होती है कि अपने वालिदैन को ताने जरूर देते हैं, कहां गया तुम्हारा वो रोब, कहां गई तुम्हारी वो दौलत, कहां गया तुम्हारा वो इख्तियार, अब हम तक पहुंचते पहुंचते वो कहां गई चीजें। हालात मुश्किल होते हैं तो हम पुरानी कामयाबियों को, पुराने जलवों को, पुराने अजमत को, पुरानी ग्लोरी और सक्सेस को, उनकी कमी महसूस करते रहते हैं, कहां गया वो सब कुछ, काश वो वापस आ जाए, काश वो वापस आ जाए, काश वो वापस आ जाए। हालात अब मुश्किल हैं लेकिन उनमें पुरानी बातों की कमी महसूस करते रहना, पता नहीं कब कहां अच्छे वो वक्त थे जब बताते हो कि तुम्हारा जनाब सिक्का चलता था इस शहर में, अब तो कोई उधार नहीं देता, ताने देते हैं। हुन तुसी चौधरी नहीं रहे, अब आपका नाम नहीं चलता, अब आपकी बात नहीं रोक रखते। वो जमाने गए कि जब आप आवाज देते थे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और जहां आप कह देते थे खड़े हो जाते थे। अब वो बुजुर्गों बातें नहीं रही, कहां गई वो बातें। अब तो हाल ये है कि घर में दाने नहीं है और कोई उधार नहीं देता। हालात ऐसे भी आते हैं, मुश्किलात ऐसी भी आती हैं और माजी की कामयाबियों की कमी महसूस करते हैं, काश वो दिन वापिस आ जाते, कहां गए वो दिन। जदौन था, खुदा ने उससे बुलाया कि मैं तुझे बुलाता हूं, तू अपनी कौम की रहनुमाई कर, उनका लीडर बन और मैं छुड़ाऊंगा उन्हें तेरे वसीले से, तेरे हाथ के वसीले से। तो वो कुजात की किताब ही में देखिए, बाब नंबर 6 है, आयत नंबर 13। जदौन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदा ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावन ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। वो याद करता है उन बातों को, उनकी कमी महसूस करता है। वो दिन कहां गए, वो उसकी कुदरत के काम कहां है। हमारे बाप दादा तो कहते थे कि खुदा ने बड़े काम किए हमारे लिए, खुदा ने हमारी बड़ी इज्जत बनाई थी, खुदा ने मिस्रियों के मुकाबले में हमें कामयाब किया, खुदा ने यरीहू के मुकाबले में हमें कामयाब किया, खुदा ने दूसरी कौमों पर हमें सरफराज किया। हम नहीं देखते वो दिन, कहां गए वो दिन। अब तो मुश्किलात हैं, अब तो मिद्यानी हम पर कब्जा करते हैं, वो आकर हमारी फसलें छीन के ले जाते हैं। हालात की संगीनी है, हालात मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन उनमें पुराने वाकयात को, उस अजमत को, उस जलवे को, उस कामयाबियों को मिस करना, भाई कहां गए वो, ये भी मुनासिब नहीं है। फिर मुकाबला करते रहना, वो दिन चंगे सन, वो दिन बड़े अच्छे थे, वो जमाना क्या अच्छा जमाना था, आज के जमाने से तो कितना अच्छा जमाना था। हम जिस हालत में रह रहे हैं वो इस काबिल नहीं, वो अच्छा जमाना नहीं, ये दिन अच्छे नहीं, ये हालात अच्छे नहीं। वो पुरानी बातें क्या खूबसूरत हुआ करती थी। हाय खुदावंद, वो मिस्र की हांडियां, वो खीरे, क्या अच्छे मजेदार खाने होते थे। बनी इसराइल को यही तकलीफ ले गई, हाय वो मिस्र की हांडियां, हाय वो गोश्त की हांडियां, हाय वो मजे मजे के खाने, हाय वो खीरे और सब्जियां, और यहां क्या है मन। हमारी माएं बड़े गुस्से में हो ना तो औलाद को क्या कहती हैं, रोटी पकी हो तो कहती हैं मन खा ले। हमारी माएं बड़ी हकारत से कहती हैं मन खा डप ले, ऐसे ही है ना। मन वो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं हकारत के साथ, बड़े गुस्से के साथ कि मन खा ले तेरे लिए पकिया है। क्योंकि इसराइली ये करते थे कि हमारे लिए क्या है मन, एक ही जायका, एक ही रंग, एक ही खुशबू। देख लीजिए गिनती की किताब में बाब नंबर 11 है और आयत नंबर 4 से 6, चौथी आयत से, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा, हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गुंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। पुराना जमाना अच्छा था। अभी निकले ही थे खरूज की किताब में 16वां बाब है तो बनी इसराइल शिकायत करना शुरू कर गए मूसा से, तीसरी आयत है खरूज 16वां बाब है और तीसरी आयत, और बनी इसराइल कहने लगे काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तू तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। भाई वो जमाने अच्छे थे, वो हांडियां अच्छी थी, वो गोश्त अच्छा था, वो बटेरे अच्छे थी, वो गोश्त क्या लजीज था, वो लहसुन, वो प्याज, वो गुंदने, वो खीरे, हमें वो याद आते हैं। और अक्सर बुजुर्ग कहते हैं ये आज का जमाना क्या अच्छा है, वो जमाने की क्या बात थी, वो बड़ा अच्छा जमाना था। ये भी मुनासिब नहीं है कि पुरानी बातों को कहते रहना कि जी वही अच्छी थी, वही अच्छी थी, और आज के हालात अच्छे नहीं है। ये भी मुनासिब नहीं है। खुदा का कलाम इस चीज को भी नापसंद फरमाता है। हम पुरानी अजमत और कामयाबियों में ही जिंदा रहें, यह भी मुनासिब नहीं। हम मौजूदा मुश्किलात में पुरानी कामयाबियों की कमी महसूस करें कि काश वो दिन वापस आ जाएं तो माने हम, यह भी अच्छा नहीं। और फिर मुकाबला करते रहना जी अब के जमाने से वो पहला वक्त अच्छा था, वो जमाना वो हालात अच्छे थे, यह भी ठीक नहीं। अक्सर लोग कहते हैं यार ये कंपनी क्या है, पुरानी कंपनी में मैं होता था कितने मजे थे, वहां पर छोड़ी क्यों, वो कंपनी छोड़ी क्यों, वो इदारा छोड़ा क्यों, वो इंस्टीट्यूट छोड़ा क्यों? या तो आपने खुद छोड़ा था किसी अच्छे की आरजू में, तो या फिर उन्होंने कहा था चल बेटा। तो जहां खुदा लेके आता है वो हालात अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में खुदा की कुदरत ज्यादा जाहिर होती है। उस मन को जो बनी इसराइल कहते थे मन, किसी और को नसीब नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं को मिला। ना बोना पड़ता था, ना काटना पड़ता था, ना गोडी करनी पड़ती थी, ना पानी देना पड़ता था, ना उसको काट के उसको छड़ना पड़ता था, ना पीसना पड़ता था। गए इकट्ठा किया और तैयार कर लो जो दिल करता है। तो मौजूदा हालात का पुराने हालात से मुकाबला करना भी मुनासिब नहीं रहता। अब माजी की गलत बातें भी होती हैं, तल्ख बातें भी होती हैं, बुरे तजर्बे भी होते हैं। किसी बंदे को बिजली के किसी स्विच से शॉक लग गया, जिन्होंने शॉर्ट पै गई, शॉक लगता है, अर्थ महसूस होता है, तो वो बंदा सारी जिंदगी ना घर में बिजली इंस्टॉल करवाएगा, ना बिजली का कनेक्शन लेगा, ना वो बल्ब लेगा, ना वो पंखे के नीचे बैठेगा, ना वो किसी ऐसे घर में दाखिल होगा कि जिसमें बिजली इस्तेमाल होती है। क्या कहेंगे उस शख्स को? एक बार उसे किसी जगह से इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, उसके बाद उसने सारी जिंदगी बिजली से तौबा कर ली, बिजली से नफरत हो गई, उसने ऐसी जगह भी नहीं जाना कि जहां बिजली कोई चीज रखी हुई है, इस्तेमाल हो रही है। क्या कहेंगे उस शख्स को? अकलमंद है? क्या कहेंगे? एक दफा बचपन में बुखार हुआ था किसी बच्चे को, अक्सर माओं को पता होगा हमारे बचपन में दो दवाइयां होती थी घर में, रेगुलर रखी होती थी। एक कैल्पोल सिरप होता था जिसका असल में पैरासिटामोल है वो, और दूसरा एक सेप्ट्रॉन सिरप होता था जो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होता था। जब माए बच्चे तब चढ़िए चलो जी दोनों पिला दिए एक एक चम्मच तो बच्चा ठीक। अब एक बार बच्चे को बुखार हो गया, डॉक्टर ने दे दिया जी कैल्पोल सिरप और सेप्ट्रॉन सिरप दे दिया, मरने के दिन तक उसी पे रहना है, वो ही नहीं छोड़ना, होना जाए बुखार इसे, अरे इसको इन्फेक्शन ना आ जाए दोबारा, घर में स्टॉक ही नहीं खत्म होने देना, तीन टाइम वही देना है। क्या कहेंगे ऐसे वालदैन को? अकलमंद कहेंगे? हम एक ही बात बार बार सुनना पसंद नहीं करते, एक ही मूवी बार बार देखना पसंद नहीं करते, एक ही खाना बार बार खाना पसंद नहीं करते, लेकिन एक ही दुख लेके सारी जिंदगी उस पर रोते रहेंगे, सारी जिंदगी उसी को नहीं छोड़ना, सारी जिंदगी उसी को नहीं छोड़ना, सारी जिंदगी उसी को नहीं छोड़ना। हाय मैंने शॉर्ट लगी सी, हाय मुझे बुखार हुआ था तो पैरासिटामोल और पैनाडोल लेना जरूर लेना, लाजम लेना, तीन टाइम लेना, भावे तो सेहतमंद भी हो। हम ये करते हैं कि माजी में कोई बुराई हो गई, कोई गलती हो गई, कोई खराबी हो गई, कोई तलखी हो गई, कोई बिटरनेस हो गई, कोई काम खराब हो गया, तो उसी के साथ जुड़े रहना, भाई मेरी जंजीर बज गई है उसके साथ, मेरा निकाह हो गया उसके साथ, अब छोड़ नहीं सकता। हम तलखियों में जिंदगी गुजार देते हैं, बस एक बार हुई थी अब सारी जिंदगी लगेगी। भाई हमारे हालात में तलखी, खराबी, बुराई, कमजोरी, कमी, दुख, तकलीफ, रोग हमारी शादी के जैसे नहीं है जो मौत तक जाएगी। ठीक है, हालात अगर एक बार तल्ख हुए तो उनमें जिंदा नहीं रहना, उनके साथ जंजीर बांध के अपने पांव को जकड़े नहीं रखना कि आगे ना बढ़ सकें। खुदा के लिए हम वो तलखियां जो जिंदगी में एक बार हालात मुश्किल हो गए थे उनसे निकल आए, हम उनके गुलाम ना बने रहें। नौमी ने ये इरादा किया हुआ था, ना बाबा मुझे नौमी नहीं, नौमी का मतलब है खुशगवार, प्लेजेंट, अच्छे हालात, अच्छी सिचुएशन। लोगों ने पहचाना कि जब वो वापस आए बैतलम, अरे ये तो नौमी है। उसने कहा नहीं मुझे नौमी नहीं, मुझे मारा कहो, कड़वाहट कहो, बिटरनेस कहो, तकलीफ कहो, रंज कहो, तलखी कहो, क्योंकि मैं अब खुशगवार नहीं रही, मैं खुशकुन नहीं रही, मेरे अंदर कोई खुशी नहीं, मेरे अंदर कड़वाहट आ गई है, क्योंकि खुदा मेरे साथ मेहर से पेश नहीं आया, मेरे दुख उसने इतने बढ़ा दिए, मैं भरी पूरी गई थी और खाली हाथ लौटी हूं। मेरे मुझे अब मेरा नाम भी तब्दील कर दो, नौमी ना कहो, खुशगवार ना कहो, मुझे मारा कहो, कड़वाहट कहो, यह भी मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन हमें माजी से कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? सीखने के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने बताई बात, लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। अब माजी में जाना पड़ेगा कि लूत की बीवी क्या किया था उसने, जो उसने किया था हमने नहीं करना। और करंथियों का पहला खत है, जरा देखिए, बाब नंबर 10 है, आयत नंबर 11। करंथियों के नाम पहला खत बाब नंबर 10 और आयत नंबर 11। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाके हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई, ताकि हम इन वाकयात से, माजी में पेश आने वाले वाकयात से, उन बातों से नसीहत पाए, हम सीखें उनसे। दूसरों के तजर्बों से हमें सीखना चाहिए कि ये हालात हमारे भी हो सकते हैं अगर हम उनकी तरह का अमल करेंगे, उनके जैसे काम करेंगे, उनकी तरह हम रवैया रखेंगे। हमारा एटीट्यूड, हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारे काम, हमारी सोच उनके जैसी होगी तो हमारा नतीजा भी वही निकलेगा जो उनका निकला था। लूत की बीवी को याद रखो, जो काम उसने किए तुमने नहीं करने, नहीं तो उसका नतीजा जो हुआ तुम्हारा भी वही होगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि हमारी नसीहत हो, हमें नसीहत मिले, हम इनसे सीख सकें। माजी से सीखना चाहिए और हमें माजी का गुलाम नहीं रहना। भाई हम तो देखो बड़े जबरदस्त बादशाहों की औलाद हैं, शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, हम तो समसून का कबीला है, हम तो दाऊद का कबीला है, हम तो यूनतन का कबीला है, हम तो अभिषे और युवाब का कबीला है, हम तो यहूसफत का कबीला है, हम तो दानियल, यसाया और यर्मिया और हनूक और हबकूक का और एलिया और अलीशा का कबीला है, हमें क्या परवाह है किसी चीज की। उसका गुलाम होके नहीं रहना, अपने आप को परखना है कि मैं किस मेयार पे हूं, मैं किस लेवल पे हूं। समसून की तरह खुदा अलग हो गया हो और हम कहें जी रूई हमारे पास है। खुदा के बड़े अच्छे खादम होते हैं लोग, खुदा के रूह का इतना मसा उन पे होता है, खुदा उनके जरिए मुर्दे जिंदा करवा देता है, कोरियों को पाक करता है, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं और उनकी औलाद समझती है कि मेरे अंदर भी वही मसा है। लेकिन असल में होता नहीं है, वो अपने मां बाप के जलवों को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। माजी का कैदी होने की जरूरत नहीं, उसके गुलाम होने की जरूरत नहीं, उसकी कैद में रहने की जरूरत नहीं। और अगर हालात बिगड़े हुए थे, अगर खराबियां थी, मुश्किलात थी, परेशानियां थी, गरीबी थी, मोहताजी थी, बीमारी थी, तो उसी में जिंदा रहना, नहीं हम कभी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि मेरे खानदान में ये शुगर है, मेरे खानदान में ब्लड प्रेशर है, मेरे खानदान में ये मसले हैं, तो हमें होगा ही होगा, नहीं इसमें भी नहीं रहना। हमारे बाप दादा मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते थे, वो खुदा को नहीं पहचानते थे, वो पत्थरों को पूजते थे, वो मिट्टी के बने बुतों को पूजते थे, लेकिन मैं, मेरा बाप और उसका बाप और उसका बाप, वो ये हर काम नहीं करते थे। मेरी पुश्तों में से कोई पादरी नहीं हुआ, कोई खुदा का खादम इस तरह से नहीं बना कि जिसको खुदा ने ये इख्तियार दिया हो कि तुम मेरे नाम से लड़के और लड़की का हाथ पकड़ के एक करो और उनकी औलादें हलाल हो जाएं। मेरी पुश्तों में से किसी को ये इज्जत नहीं मिली, लेकिन खुदा ने मुझे दी है कि मैं उसका खादम होते हुए जो कह दूं हो जाता है। माजी की गुलामी में नहीं रहना, खुदावंद हमें नया बना सकता है। याद रखने की बातें, हमें हाल और मुस्तकबिल के लिए खुदा पर भरोसा करना है। यशायाह बाब नंबर 43 में लिखना है, वो पुरानी बातें उन्हें याद ना रखो, उनकी गुलामी में ना रहो, उनको ही याद ना करते रहो, मैं नया काम करने को हूं, मैं नया काम करने को हूं। मेरे बाप दादा बुत परस्त थे तो मैं कहूं जी वो बुत परस्त थे तो मैं भी बुत परस्ती रहूंगा, वो खुदा के घर से दूर थे तो मैं भी दूर ही रहूंगा, नहीं खुदा नया काम करेगा। खुदा नया काम करेगा। भरोसा रखें खुदा पर, खुदा नया काम करेगा। खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करेगा। खुदा ने खुद फरमाया है मैं नया काम करूंगा, और उस पर भरोसा रखना है। जो कुछ हमारे लिए अच्छा है वही यहोवा देगा। जबूर 85 में जो चंगा है सो देवेगा यहोवा, बिल यकीन ते अपना हासिल देवेगी साड़ी सब जमीन। जो कुछ अच्छा है वो खुदावंद देगा। अगर माजी में पिछले दिनों में हालात बुरे थे, खराबियां थी, हमारे रिश्तों में बिगाड़ था, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं थी, मेरे तजुर्बात अच्छे नहीं थे, यकीन रखेंगे खुदा नया करेगा, खुदा बदलेगा, खुदा हालात बदलेगा, खुदा इख्तियारात बदलेगा, खुदा सिचुएशंस बदल देगा, खुदा आपके दर्जात बदल देगा, खुदा आपके लेवल्स बदल देगा। खुदा हालात बदलने की ताकत रखता है। वो कहता है कि मैं सहरा में, दश्त में नदियां जारी कर दूंगा, जहां पानी नहीं, जहां दरिया नहीं, जहां चश्मे नहीं, मैं वहां से नदियां जारी कर दूंगा। खुदा तो वो है जिसने कहा रोशनी हो जा और हो गई, पानी बन जा तो बन गया, फिजा बन जा तो बन गई। वो जो कहता गया चीजें बनती गईं। हमें नजर आता है कि हमारे मुस्तकबिल में, आने वाले हालात में, आने वाले दिनों में हमारे लिए बेहतरी नजर नहीं आ रही, हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमारे लिए परेशानियां हैं, हमारे लिए दुख हैं, बीमारियां सामने खड़ी हैं, हालात की इतनी संगीनी है कि मेरे लिए मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाऊंगा, मेरे ऊपर कर्जों का अंबार चढ़ा हुआ है, मेरे ऊपर बेटों और बेटियों की जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप के फराइज हैं, बहनों भाइयों की जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर बड़े बोझ हैं और मुझे कुछ रोशनी का निशान दिखाई नहीं दे रहा। यकीन कीजिए सहराओं में, रेगिस्तानों में, रेत के अंदर, जहां जिंदगी के आसार नहीं, खुदा नदियां जारी करने का वादा करता है। खुदा हालात बदलने की ताकत रखता है। जहां मौत होती है वहां खुदा उतर आए तो जिंदगी पैदा हो जाती है। उसने अपने नबी से कहा जा वादी में, जा क्या देखता है, सूखी हड्डियां हैं, मरों को कई कई सौ साल हो गए हैं, कलाम कर इन पर, सूखी हड्डियां हैं, इंसान भी नहीं, बीमार भी नहीं है, मौत के करीब भी नहीं, मरे हुओं को कई सौ साल गुजर गए होंगे, सूखी हुई हड्डियां हैं, कलाम कर, मेरा काम है आगे, तू कलाम कर। कलाम किया, हवाएं चली, हड्डियां इकट्ठी हुई, कोई कहीं बिखरी, कोई कहीं बिखरी, उड़ के अपने अपने बदन तैयार होने लगे, गोश्त चढ़ा, नसें चढ़ी, चमड़ा चढ़ा, हवा आई और जिंदा हो गई। खुदा ने कहा मैं ऐसे ही तुम्हारे हालात और कौम को बदल दूंगा, जो मर चुके हो मैं जिंदा कर दूंगा। खुदा जहां कुछ दिखाई नहीं देता वहां पैदा कर देता है। खुदा सहराओं में नदियां पैदा कर देगा। जहां आपको नजर आता है कि मेरा बॉस, मेरा ऑफिसर मेरे हालात बदलने नहीं देगा, खुदा बदल देगा। जहां दिखता है इबलीस ने मेरी रुकावटें, मेरे लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं, खुदा इबलीस के जोर को हरा चुका है और वो खुदावंद आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा। और जब हालात बदल जाए तो खुदा की शुक्रगुजारी वाजिब हो जाती है, खुदा की तमजीद वाजिब हो जाती है। खुदा यस्सु ने 10 कोड़ियों को कहा जाओ अपने तई काहिन को दिखाओ, वो रास्ते में चलते चलते पाक हो गए, साफ हो गए। उनमें से एक ने रास्ते में देखा मैं तो ठीक हो गया, वापस पलटा और पांव में गिरकर सजदा करके उसकी तमजीद करने लगा। खुदावन ने कहा क्या बाकी के 9 ठीक नहीं हुए कि वो तमजीद करने के लिए आते, वो शुक्रगुजारी के लिए आते। खुदा जब काम करता है हम भूल जाते हैं कि खुदा ने किए हैं। जब खुदा हमारे हालात बदल दे, खुदा अंधेरों में रोशनी निकाल दे, खुदा सहराओं में नदियां जारी कर दे, मुश्किलात के अंदर खुदा आसानियां पैदा कर दे, हमारी आरजुएं जब खुदा पूरी कर दे, तो हमें शुक्रगुजार होना है और खुदा की तमजीद करना है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब मैं इबादत के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे चर्च के करीब पहुंचा तो कॉल आई, भाई जरुब्बाबल हमारे पास बैठे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है जरुब्बाबल, और ये पिछले दिनों किसी मुश्किल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा खुदावन ने मुझे इस मुश्किल से निकाला तो मैं कलीसिया के सामने खुदा के जलाल के लिए गवाही देना चाहता हूँ। जब इसको मिलने के लिए गया था ये बड़ी बुरी हालत में था, और जो इसके साथी थे, इसके रूममेट्स थे जिनके साथ ये रहता है, वो बड़े फिक्रमंद थे कि क्या होगा इसे, व्हीलचेयर पे था और व्हीलचेयर पे बैठे बैठे तड़पता था।
चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, लेकिन खुदावंद ने इसके हालात बेहतर किए हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपनी ज़िंदगियों में।
हालात जो माजी में हो चुका उसके ग़ुलाम ना रहें। हो सकता है कि हम में से कोई ऐसा हो जिसको ये लगे कि मेरे ख़ानदान के हालात अच्छे नहीं रहे पिछले साल में, पिछले दिनों में, पिछले सालों में, और ये ऐसे ही रहेंगे। नहीं, खुदा पर भरोसा रखिए, वो हालात बदल देगा। खुदा पर भरोसा रखें, खुदा आपके हालात, आपके ख़ानदान के हालात, आपके जिस्म के हालात, आपकी बीमारियों के हालात, आपके रोज़गार के हालात बदल देगा। खुदा उस पर भरोसा रखें, दुआ करें। खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरी नेकियों, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी कुदरत के लिए जो हालात को बदलने में हमारे साथ हैं। खुदावंद तेरा फजल, तेरा इत्मीनान अपने लिए चाहते हैं। हमें माजी की गुलामी से निकाल दे और हमें हाल में और मुस्तकबिल में तो अपनी कुदरत पर भरोसा रखने का फजल अता कर। हम तुझ में भरते, तुझ में मजबूत होते चले जाएं, आगे को बढ़ें, पीछे ना लौटें। लूत की बीवी को याद रखते हुए आगे ही आगे बढ़ें, पीछे मुड़ के ना देखें, उन बातों की तरफ ना ध्यान करें जिनमें हमें परेशानियां और दुख थे, बल्कि हम ये देखें कि हमारा जिंदा खुदा, हमारी उम्मीद का हमारा जिंदा खुदावंद हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है और हम उसके करीब जाएं। खुदावंद तो अपने बच्चों को कबूल कर, हमारे हालात बदल दे। यहां बैठे एक एक शख्स के हालात बदल दे, हर एक की सिचुएशन में जो बिगाड़ है उसे सुधार में तब्दील कर दे, हर एक मोहताजी को आसूदगी में बदल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।